ओम शांति। जीवन में खुशी कब कब होती है? जब बाबा का अच्छा अनुभव होता है। और संसार में कब कब होती है? जब इच्छाएं पूरी होती हैं, कोई प्राप्ति होती है। और सोचा नहीं उससे भी ज्यादा मिल जाए, अचानक कोई लॉटरी लग जाए। और खुशी कब होती है? और कब? हाँ, जब हम सक्सेस होते हैं, सफलता मिल जाती है तो खुशी होती है। और कब होती है? जब जान पहचान वाले अचानक निकलाए, वो मिलते हैं उनसे, तो भी खुशी होती है। हेल्थ ठीक रहे तो भी खुशी होती है। बीमारी में तो दुख होता है ना। हेल्थ हो, वेल्थ हो तो खुशी होती है। किसी भी प्रकार का अभाव ना हो, कोई कमी पेशी ना हो, या जो बड़ी बड़ी दूर दूर पहुंच हो और वो भी हमारा कहना मानते हो, तो भी खुशी होती है। तो ब्राह्मण जीवन जो है, ये खुशी का जीवन है। ब्राह्मण जीवन की संस्कृति जो है, संसार से बिल्कुल अलग से है। इसलिए आज बाबा ने कहा है, ईश्वरी गत मत न्यारी और प्यारी है। टोटली अलग, संसार की संस्कृति से बिल्कुल अलग संस्कृति है ये। जैसे हम ब्राह्मण जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारा सारा संसार ही बदल जाता है, है ना? सबसे पहले क्या बदलता है? दृष्टिकोण बदल जाता है। और क्या क्या बदलता है? खान पान भी बदल जाता है। और इच्छाएं मर जाती हैं। हैं जी, खुशी आता है, खुशी आती है। हाँ, और आता भी है और आती भी है, दोनों ठीक है। हाँ, और बाबा मिला तो बहुत खुशी होती है ना। हाँ, लेकिन बाबा मिलने के बाद भी कभी कभी तो डाउन क्यों हो जाते हैं फिर? तो उसके भी कारण ढूंढेंगे हम। हाँ? तो बाबा ने आज हम सबको ज्ञान की जागृति, बाबा ने कहा तुम बच्चों को ज्ञान की जागृति आई है। बहुत सारी बातें हैं आज की मुरली में। तो ज्ञान की जागृति आने से क्या हुआ? बाबा ने कहा तुम्हारा भटकना बंद हो गया है। तुमको परिचय मिला, बाप का परिचय मिला, 84 जन्मों का पता चला, जीवन के आदि मध्य अंत का पता चला, तो हमारा भटकना बंद हो गया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान की विस्मृति से कहीं कहीं हम भटक तो नहीं जाते हैं बीच बीच में ब्राह्मण जीवन में भी? जैसे ज्ञान की रोशनी कम हो जाती है तो भटकना फिर चालू हो जाता है। फिर हमारी जो मंजिल है फिर वो दूर लगने लगती है। जो वो मंजिल सामने खड़ी है लेकिन वो कोसों दूर नजर आती है, फिर लगता नहीं है वो कब पहुंचेंगे उस मंजिल पर, कैसे उस पर कितने सारे विघ्न आएंगे, कैसे उनको पार करेंगे, पता नहीं हमारा साथ कौन देगा या नहीं देगा, आगे फ्यूचर में क्या होगा, एक अज्ञात सा भय लगा रहता है। तो फिर ब्राह्मण जीवन से धीरे धीरे खुशी कम होने शुरू हो जाती है। तो हम देखेंगे ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी रहे, उसके हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो कैसे हमको ब्राह्मण जीवन में खुशी रहे? तो सबसे पहली बात है, पहले तो हमको देखना है कि हमको ब्राह्मण जीवन में मिला क्या क्या है। जो बातें हमको सदा स्मृति में रखनी है, हमेशा उन बातों को बार बार दोहराते रहना है, बार बार देखते रहना है। जैसे बहुत बड़ा जो खजाने के मालिक होते हैं तो बार बार अपने खजाने को स्मृति रहती है उनकी, खजाने की जो स्मृति है वो उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि हमारे पास खजाना है। और वो खजाना होते हुए भी विस्मृति हो तो चेहरे पर खुशी नहीं रहती है, है ना? तो हमको भी हमेशा स्मृति बनी रहनी चाहिए कि हमको इस ब्राह्मण जीवन में मिला क्या क्या है ना। जब तक प्राप्तियां हमारे सामने नहीं है तब तक खुशी आ नहीं सकती है। तो हमेशा प्राप्तियां, एंटेनमेंट्स, हमेशा हमको वो सामने नजर रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपने जेब में चित्त रखो, लक्ष्य का चित्त रखो। तो एक तो जेब स्थूल में है, लेकिन एक बुद्धि रूपी जेब में, बुद्धि रूपी पात्र में भी हमेशा वो स्मृतियां बनी रहनी चाहिए। तो बाबा से हमको क्या क्या मिला है? इतना ऊंचा ज्ञान मिला है जिस ज्ञान के आधार पर हमारा जीवन ही टोटल परिवर्तन हो गया। संसार की दशा देखिए आज, है ना? आज की एक मुरली में एक मुहावरा कहो या लोकोक्ति कहो, कौन सी थी? एक मुहावरा, हाँ, मिरुआ मौत मलू का शिकार, क्या अर्थ है इसका? मिरुआ मौत, हाँ, जानवर मर गया तो उसके लिए तो मौत होगी, लेकिन मलू का शिकार अर्थात जो शिकारी शिकार कर रहा है उसके लिए तो शिकार है, वो खुशी की बात है ना। तो संसार में अनेक प्रकार के दुख बढ़ रहे हैं, संसार तो कहां मौत की गर्त में जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो चीजें मायने नहीं रखती है, हमारी खुशी कायम रहनी चाहिए, है ना। आज संसार में किस प्रकार का वातावरण भला बना हुआ है, कौन सा वायरस है, कोरोना, तो देखना कहीं हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार के वायरस तो नहीं बैठे हुए। एक तो वो शरीर को मृत्यु की तरफ ले जाता है, लेकिन कहीं हमारी मानसिक स्थिति को अनेक प्रकार के व्यर्थ के वायरस तो नहीं मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, बार बार हमारी स्थिति का गला घोटते रहते हैं, बार बार हमको शमशान घाट में ले जाते रहते हैं। तो ऐसे व्यर्थ के विचार हमारे अंदर ऐसे तो है नहीं कोई भी। तो बाबा ने हम सबको तो संसार की हलचल से ऊपर उठना सिखा दिया है, तो हमको प्राप्तियां देखनी है कि सबसे पहले हमको क्या मिला, ज्ञान मिला। इस ज्ञान से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आया, उस ज्ञान से हमारी दूसरी बात भाषा बदल गई, है ना। कौन सी भाषा होगी हमारी? आज की मूल्य में तीन प्रकार की भाषाओं की बात थी, कौन सी भाषा थी आज? हाँ, टॉकी मूवी साइलेंस। तो तीन प्रकार की भाषाएं बाबा ने बताई, तो हमारी भाषा भी बदल गई है। ब्राह्मणों की भाषा क्या होती है? जैसे पहले ओम शांति बोलते हैं, सेंटर में आते बहन जी कहती ओम शांति, तो वहां से बदलना शुरू होता है धीरे धीरे, है ना। अलौकिक संकल्प हमारे, प्योर संकल्प हमारे, फिर धीरे धीरे विचारधारा परिवर्तन होती जाती है ना। तो हमारी भाषा कैसे होगी, शुद्ध शैली। तो हमको भाषा पर भी बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है। बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से हीरे मोती, जैसे पिछले संडे की मुरली में था ना, देवताओं के मुख से क्या निकलता है, जैसे हीरे मोती, तो वो गायन तुम ब्राह्मणों का है। तो क्या हमारे मुख से ऐसे हीरे मोती निकलते हैं, या दूसरे के दिल को सीधा जख्मी कर देते हैं? कोई कटाक्ष तो नहीं ऐसा लगता है कि बोल तो हम कुछ रहे हैं लेकिन सामने वाले को कटाक्षी अनुभव हो रहा है। तो बोल पर भी बहुत ध्यान रखना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों के मुख से एक भी ऐसा ऐसा बोल नहीं निकलना चाहिए, जैसे बाबा ने बताया तुम पागल हो, ये भी गाली देना किसी को है, कुवचन है, ये कुवचन है। तो देखा कहीं कहीं तो निकल भी जाता है, कितने सालों के चलने के बाद भी कईयों के मुख से निकल जाता है। तो बताओ भाषा का परिवर्तन नहीं हो रहा है धीरे धीरे, तो हमारी कंट्रोलिंग पावर कहां तक आएगी हमारे जीवन में? तो हमारी भाषा में मिठास होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। एक स्लोगन था ना पांच दिन पहले, कौन सा स्लोगन था? चार बातें थी उसमें, मुख मधुर होना चाहिए और बाकी तीन बातें, हाँ, बुद्धि रहम दिल और ठीक मन शीतल, दृष्टि अलौकिक, मन शीतल, बुद्धि रहम दिल और मुख में मधुरता होनी चाहिए। तो चार बातें, तो हमारे मुख से मधुरता का अनुभव होता है दूसरों को, या सीधा तीर की तरह जख्मी कर देते हैं, एक तीर छोड़ा और सीधा घायल, फिर उसका जिंदगी भर मल्लम पट्टी करते रहो, आगे पीछे घूमते रहो, मनाते रहो। बाबा ने कहा तुम बच्चों को सबसे प्यार रखना है, संडे की मुरली में था ना, कल की मुरली में, सर्व और सदा सर्व से प्यार। तो हमारे बोल से कोई ऐसा बोलना निकले जिससे सामने वाले को दुख हो, उसको को कष्ट लगे। हम सबके दुख हर्ता सुख करते हैं, बाबा ने कहा जैसे बाप वैसे तुम बच्चे भी बाप समान हो, मास्टर दुख हर्ता सुख करता है। तो दूसरी बात हमारी भाषा बदल गई। पहली क्या रखनी हमको याद ध्यान में, कि हमको प्राप्तियां सदा स्मृति में रहनी चाहिए। दूसरा भाषा, तीसरा हमें कंपनी कैसी करनी है, हमारा संघ कैसा है, क्योंकि संघ बहुत मायने रखता है। संघ का इस ब्राह्मण जीवन में बहुत विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना है, क्योंकि संघ से थोड़ा भी हम लड़खड़ाए तो हमारा पुरुषार्थ एकदम, जो कल बाबा ने कहा तेज रफ्तार होनी चाहिए तुम्हारी, तो एकदम रुक जाएगा भाई, रुक नहीं जाएगा बहुत, बल्कि हम रसातल में चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा हमारा पुरुषार्थ किया किराए पर सारा पानी फिर जाएगा। तो हमको अपनी कंपनी पर संघ, जैसा संघ वैसा रंग, सारे दिन में हमारा संघ कैसा है, भले हम अकेले भी बैठे हैं, लेकिन अकेले में भी आजकल संघ तो अनेक डिजिटल संघ है, तो डिजिटल संघ भी हमारा कैसा है, उस डिजिटल संघ में अनेक प्रकार के संघ हैं, कहीं वो संघ हमारे अंदर के जो शक्तियां हैं, अंदर की जो प्योरिटी है, अंदर के जो वाइब्रेशन है, प्योर वाइब्रेशन को खा तो नहीं रहा है, कहीं हमारे पुरुषार्थ पर ग्रहण तो नहीं लग रहा है। तो हमको देखना हमारा संग कैसा होना चाहिए, कंपनी कैसी है। हमेशा बाबा कहते बाबा की कंपनी में रहो, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लो, कनेक्शन बाप से रखना है। तो हमारा हमेशा कनेक्शन एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव, अगर किसी भी संबंध में कमी होगी तो वो संबंध खींचेगा बार बार, है ना। कल का स्लोगन था ना, कौन सा स्लोगन था कल, नष्ट मोह बनने के लिए दैहिक नाते हैं। हाँ, नष्ट मोह कब बनेंगे, दैहिक नाते समाप्त करेंगे तो नष्ट मोह बनेंगे। तो हमको दैहिक नातों से ऊपर उठना है ना। इस ज्ञान में आने के बाद भी या कहीं हमारी बुद्धि घर में लटकी है, रहना तो हमको सबके बीच में ही है, लेकिन अटैचमेंट ज्यादा ना हो, हमको केवल निभाना है, तोड़ निभाना, ऊपर ऊपर से प्यार रखना है, अंदर का प्यार हमारा बाबा से हो, है ना, घर गृहस्थ में। और ये सबसे बड़ी साधना है, रहना सबके साथ ही है, क्योंकि उनका कल्याण कौन करेगा, क्योंकि उनके साथ हमारे हिसाब किताब है। अगर हमने उनसे किनारा किया तो हमारे हिसाब किताब का बंधन बड़ा कड़ा होता जाएगा और उसका परिणाम हमारे चिंतन ही चलेगा। आज की मुरली में था, चिंतन क्यों नहीं चलता है, क्योंकि कड़ा बंधन है। या तो कहीं हम लौकिकता से दूर भागने की फिराक में रहते हैं, उनसे पूरा निभाते नहीं है, है? हाँ, हम अगर हमारी जिम्मेवारियां वहां है नहीं कोई, तब तो हमको पूरा निर्बंध बना लेना है। अगर जिम्मेवारियां तो निभाना, उनको प्यार से, स्नेह से, संबंध से निभाना है। वो संबंध जो है बंधन में न तब्दील हो जाए, केवल निभाने तक सीमित रहे, तोड़ निभाना है। तो हमको हमेशा कंपनी का ध्यान रखना है। फिर चौथी बात, हमारी दृष्टि बदल गई। हमारी दृष्टि कैसे हुई, पहले दृष्टि कैसी थी, अभी कैसी है। पहले जिस्मानी दृष्टि थी, दैहिक दृष्टि थी, और अवगुणी दृष्टि थी, क्रिमिनल दृष्टि थी, अभी कैसी होगी, आत्मिक दृष्टि है ना, रूहानी दृष्टि है, प्योर दृष्टि है, अलौकिकता दृष्टि में रूहानियत समाई हुई है। तो दृष्टि में हमारा कितना परिवर्तन हो गया। रोज एक अभ्यास करना है कि प्योरिटी का सागर बाबा मेरी आंखों में समाया। जब भी आंखें बंद करते हैं ना कुछ देर के लिए, चाहे योग में कभी, तो ये सोचना प्योरिटी का सागर मेरी आंखों में समाया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ आंखों में। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा योग में पलकें बंद करके बैठ जाना फिर तो ये अभ्यास करना है। तो अपनी दृष्टि को बड़ा शुद्ध करना है, क्योंकि इस दृष्टि का ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्व है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सोचने से भी पहले दृष्टि काम करना शुरू कर देती है, दृष्टि के आधार पर भी हमारी सोच का निर्माण होता है फिर। तो दृष्टि की हमारी कैसे होगी, प्योर होगी, शुद्ध होगी, पवित्र होगी। तो दिन प्रतिदिन अपनी दृष्टि को भी बड़ा ऊंचा उठाना है। तो चौथी बात होगी दृष्टि की। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज, है ना। तो इस ब्राह्मण जीवन में स्थूल एक्सरसाइज भी जरूरी है और सूक्ष्म एक्सरसाइज। बाबा ने डिटेल बताई ना, पांच रूपों का अभ्यास तो करते हैं ना, सभी करते हैं कि कभी कभी भूल जाता है। एक दिन में कितनी बार होता है, 8 बार हो जाता है। और लेकिन कभी कभी वो भारी भी लगता है ना, लगता ना भारी नहीं लगता है। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि एक बाबा ने कहा 5 मिनट में करो एक ड्रिल, है ना। अब कई बार होता तो 5 मिनट में एक ही समान में स्थित रहते हैं। अब मान लो हम परम धाम में बैठे हैं, आने का दिल नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरे में आने की जरूरत क्या है। तो उसमें कौन, अब वो एक ही ड्रिल में फिर वो 20 मिनट लग जाएंगे तो काउंट कैसे करेंगे। तो टाइम कॉन्शियस नहीं बनना अपने को। भले एक समान में हम परम धाम में टिके रहे या ब्रह्मा बाबा के साथ में, अव्यक्त बाबा दादा के सामने सूक्ष्म बतन में बैठे रहे, वो टाइम क्वेश्चंस नहीं बनना अपने को। सारे दिन में देखना है कि हमको सारे दिन में अधिक से अधिक हमारा मन जो है किसी न किसी ड्रिल में बिजी रहे, उसमें असमंजस में नहीं रहना है कि इतनी बार करना है, इतने बार हुआ है। हाँ, ध्यान रखना है, क्योंकि मन की कंट्रोलिंग पावर को करने के लिए जैसे 8 बार बाबा ने कहा कोशिश करना है, 8 बार ये करना है। लेकिन कई बार इत्तेफाक ऐसे भी होता है कि लंबे समय तक आत्मा एक ही स्थिति में अनुभव करने शुरू कर देती है, उसमें उसको रस बैठ जाता है। तो हमको वहां स्थित होकर बैठना है, उसमें भारी नहीं होना है, ठीक है। तो ड्रिल हमको करनी है और शारीरिक ड्रिल भी करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा तब तो पुरुषार्थ भी नहीं होता है। फिर शरीर नहीं तो खींचता है, कोई ना कोई व्याधि होती है। इसलिए शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए भी वॉकिंग करना, या यहां तो सेवाओं बिजी रहते हैं, हैवी सेवा में आना जाना लगा रहता है, घरों में भी अगर टाइम होता है तो थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि शरीर बड़ा कीमती है, ये भगवान के द्वारा मिली हुई अमानत है। और किसी की अमानत को हम सही तरीके से नहीं रखें तो क्या होगा फिर। तो इस अमानत को भी संभाल के रखना अपने को, ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी तन के द्वारा सारे कल्प की पुरुषार्थ का प्रारब्ध अभी हमको प्राप्त करना है। वो सारी प्रारब्ध कल्प जन्म जन्मांतर का जो मौका मिला है वो इस तन के द्वारा, इसलिए इस रथ की भी संभाल करनी है। तो पांचवी बात होगी एक्सरसाइज। फिर छठी बात है फॉरगिव, फॉरगिव करना है। जीवन में कई बार किसी से मनमुटाव होता है, या कई बार पहले हो चुका हुआ है, या कभी हो इत्फाक ब्राह्मण जिन में भी हो जाता है, तो क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना, उसमें बहुत फायदा होता है। अगर हमारी किसी से मनमुटाव हो गया है और हम क्षमा नहीं मांगे, भले गलती उसकी है तो भी हमको क्षमा मांग लेनी है, क्योंकि अगर हमने नहीं मांगी तो उसके मन भारी रहेगा और उसका भारी मन हमारे मन को भी भारी करता रहेगा, बोझ हमारे मन पर बोझ डालता रहेगा, और प्रयोग में बैठे बैठे वही बातें चलेंगी बार बार वही चलेंगी। इसलिए अगर होता भी है मनमुटाव, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो तो होगा, क्योंकि हिसाब किताब तो है ही है। अब तुरंत तो हम दूध के दुले तो है नहीं है, ये हाथों हाथ हम निपट जाएगा। तो क्षमा मांग भी लेनी है और क्षमा कर भी देना है, ताकि हमारे पुरुषार्थ का मार्ग सरल हो जाए, हमारी खुशी गायब ना हो, खुशी हमको हमेशा कायम रखनी है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि क्या कर देना है, किसी को फॉरगिव, क्षमा कर देना है। फिर नेक्स्ट है गुड विशेष, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, है ना। जैसे कल परसों था ना वरदान, कौन सा वरदान था, वरदान नहीं स्लोगन है, सबके प्रति उपकार अर्थात शुभ भावना शुभकामना रखना ही क्या है, ये दुआएं कमाना है पुण्य, उससे स्वतः दुआएं मिलती जाएंगी, ऐसे था, है ना। तो सबके प्रति उपकार की भावना, शुभ भावना शुभकामना, क्योंकि हम सभी एक ही परिवार के हैं, एक ही बाबा के बच्चे हैं, सबके स्वास्थ्य संस्कार अलग अलग हैं, तो हमको सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। बाबा किसी के प्रति अशुभ सोचता है, जब बाबा ने कहा ना तुम्हारा टाइटल क्या है, कल की मुरली में था, विश्व कल्याणकारी है, तो बाप हमारा विश्व कल्याणकारी है तो हम भी तो विश्व कल्याणकारी है कि नहीं है। तो सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना की वाइब्रेशन हमेशा हमारे से निकलते रहना चाहिए, किसी के प्रति भी अशुभ सोचनी हो, अगर होती भी है तो भी उसको सुलटा के तुरंत उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना है, क्योंकि बाबा ने कहा अंत में ऐसी ऐसी आत्माएं आएंगी जिनको आपको अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा, कमी कमजोरियां तो दिखाई देंगी नहीं, परिवर्तन। मान लो हमारे में कोई कमी कमजोरी है, अब हमारे में शक्ति नहीं है उस परिवर्तन करने की, तो क्या करेंगे उसको, तो दूसरों को सहारा ढूंढेंगे ना हम। तो उसी तरह से अगर किसी में हमको कमी कमजोरी दिखती है तो उनके प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रख के हमको उनको भी आगे बढ़ाना है। ये नहीं सोचना है कि पुरुषार्थ में आगे क्यों जा रहा है, अगर कोई पुरुषार्थ में आगे जाता है उसका आगे जाना ही हमारा आगे जाना है ना। तो क्योंकि परिवार है, परिवार में तो एक दो को आगे बढ़ाते ही है ना, पीछे थोड़ा करते हैं। तो सबके प्रति अच्छा पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो, तो हमको सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना। फिर नेक्स्ट है इग्नोर करना, कई बातें हमको इग्नोर करनी पड़ती हैं, है ना। अगर हमारा ज्ञान योग का टाइम है और हमको कहा जा रहा है कि अभी इधर उधर चलो घूमने फिरने के लिए, तो वो बातें हमको इग्नोर करनी है, क्योंकि एक बार अगर आदत पड़ जाती है वो फिर आदत हमारे पुरुषार्थ को खराब कर देती है, हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं को तोड़ देती है। तो बहुत सारी बातों को कहीं कहीं हमको इग्नोर करना पड़ता है, कहीं व्यर्थ में बैठ के कोई गप्पे मार रहे हैं तो वहां हम बैठ जाएं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो वो भी हमारा पाप चढ़ता जाता है, और वो पाप हमारे धीरे 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 वृद्धि को पाता जाएगा। और एक तो अनेक जन्मों के पाप पहले से सिर पर बहुत हैं, दूसरों को कब उतारेंगे। तो हमको संघ का भी देखना है कि इग्नोर करना उन बातों को कि कहाँ कहाँ हमारा मन जा रहा है, उनको इग्नोर कर देना है, भले किसी को थोड़ा लगे, है ना। तो बहुत सारी बातों को भी व्यर्थ की जो बातें हैं उनको इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट है जिम्मेवारी, बाबा ने हम सबके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी दी हुई है, कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं, हाँ देखो विश्व कल्याण, अब बैठे बैठे विश्व कल्याण कैसे करेंगे, पूरा विश्व पड़ा हुआ है कैसे कल्याण करें, कम से कम सोच तो हम सकते हैं ना, पांच मिनट सारे, जैसे पांच मिनट या आधा घंटा जब हम योग में बैठते हैं तो हमको ये निश्चय कर लेना कि ये पंद्रह मिनट आधा घंटा हमारा विश्व के लिए ही है, वही संकल्प चलना चाहिए, दूसरा कोई संकल्प ही चले, विश्व की सर्व आत्माओं को सामने इमर्ज किया हुआ है और बाबा से हमारा कनेक्शन जुटा हुआ है और बाबा से सर्वशक्तियों की किरणें आ रही हैं, मुझ में आ रही हैं और उन सब आत्माओं में जा रही हैं, पूरा मन बुद्धि को एकदम समर्पित करके एकाग्र करके उनके ऊपर अर्पित कर देना, ताकि उन आत्माओं का भी कल्याण हो। आज ही था ना बाबा ने कहा कि अखबारों में डलेगा, जगह जगह कहां पहुंचेंगे, सब जगह कहां पहुंचेंगे, अखबारों में डलेगा, वो भी दिन आएगा, है ना। तो हम कोई विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। अनेक प्रकार की आत्माएं एटमोस्फेयर में भटक रही हैं, उनको भी कौन मुक्ति दिलाएगा, उनको मुक्त करना है ना। और हमारे अंदर अपने ऐसे संस्कार हैं उनसे भी हमको मुक्त होना है, जो संस्कार हमको ही तंग करते रहते हैं, जो संस्कार हमारे लिए अनेक प्रकार के बोझ वाले हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, भूत बनकर बैठे हुए हैं, तो उनसे भी हमको मुक्त होना है ना। और पांच विकारों को भी खत्म करना है, ये भी जवाबदारी है हमारी। आत्मा एकदम प्योर सच्चा सोना होकर, आज ही बाबा ने कहा ना जैसे मनुष्य जंक खाए हुए हैं, पत्थर बुद्धि उनको कौन समझाए, आज की मुरली में बाबा ने कहा तो पार्श्व बुद्धि कौन बनाएगा। तो कम से कम पहले हम अपने आप को तो पार्श्व बुद्धि बनाए, हमारी बुद्धि तो ऐसी शुद्ध होती जाए कि ज्ञान के हीरे मोती धीरे धीरे ठहरना शुरू कर दें, ताकि वही चिंतन चले, नहीं तो दूसरे पत्थर अर्थात व्यर्थ की बातें सोचते रहेंगे हम। तो अपनी जिम्मेवारियों को भी हमेशा हमें अपने सामने रखना है, ताकि हम बाबा के कर्तव्यों की पूरा कर सके, मददगार बन सके। बाबा ने कहा ना तुम बाप के मददगार बच्चे हो, आज की मुरली में था, है ना। तो जिम्मेवारी पूरी है। नेक्स्ट, ये संसारिक खेल है, इसको खेल की तरह देखना है। और खेल में कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है, तो ड्रामा चल रहा है, स्टेज पर है, लेकिन हमको अपना पार्ट कैसे प्ले करना है ये हमारे हाथ में है। चाहे हीरो पार्ट प्ले कर लो, चाहे बिलियन का प्ले करो, चाहे कमेडियन का प्ले करो, हमारे हाथ में अभी तो ये खेल चल रहा है। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है ना। जैसे साक्षी अब कैमरा होता है, अब कैमरा सामने लगा है, कैमरा हर चीज की रिकॉर्डिंग कर लेता पूरी, है ना, उसमें सब है, लेकिन उसको कोई इफेक्ट थोड़ा होता है। उसी तरह हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे अंदर नहीं हो, साक्षी होकर रहना है। ये ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, किसी का पार्ट कैसा, किसी का पार्ट कैसा है, तो हम पार्ट को देखकर घबराएं क्यों। अब सारी फिल्म में हीरो ही हो जाए तो अच्छी लगेगी फिल्म, उसमें मारदाड़ वाला भी चाहिए, उसमें गीत वाले भी चाहिए, कॉमेडियन भी चाहिए, है ना, तभी तो फिल्म अच्छी लगती है। उसी तरह सृष्टि रंगमंच है, सभी अपना अपना पार्ट प्ले करे, सबका अपना अपना पार्ट है, तो हम किसी के पार्ट को देखकर दुखी क्यों, चाहे कोई सुखी है चाहे कोई दुखी है, दोनों को देख के हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब आत्माएं अपने अपने पुण्य तो पाप और पुण्य साथ साथ लेकर चल रही है, सबका पार्ट अपना अपना है, तो हमको साक्षी होकर रहना है। चाहे और इस साक्षी अवस्था का अभ्यास तो घर में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, विशेषकर घरों में जब बच्चे तकलीफ में होते हैं या परिवार में कोई समस्या आ जाती है, कोई सुनता नहीं है हमारी, उसमें साक्षी अवस्था का बहुत जरूरत पड़ती है। तो साक्षी डिटैच हो जाने का, उनका पार्ट उनके कर्म, जहां तक प्रयास होता है कि वहां तक हमारा पुरुषार्थ रहना चाहिए, और जब नहीं मानते तो छोड़ देना उनको, साक्षी हो गए। तो हमको ये भी देखना है कि ये खेल चल रहा है, इस खेल में हमें अपना पार्ट कैसे प्ले करना है ये देखना है। नेक्स्ट है हमारी लविंग नेचर चाहिए। बाबा ने काल मुरली में कहा था ना, ये संसार किस चीज का भूखा है, आज की दुनिया किस चीज की भूखी है, हाँ सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। संसार में स्नेह चाहिए सबको, तो हमको निस्वार्थ स्नेह देना सभी को। हम स्नेह के सागर के बाप के बच्चे हैं, तो हमें हमारे से भी सबको स्नेह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं रूखा रूखा स्वभाव, ऐसे मुंह बना के इधर उधर घूमते रहे, आपस में मिले नहीं, मिलना जुलना ब्राह्मण परिवार भी मिला है, नहीं तो क्या प्यार हमारा वास्तव में क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारी दोष दृष्टि गई नहीं है अभी तक, दूसरों में हम दोष ही देखते रहते हैं, इसलिए प्यार बढ़ता नहीं है। तो हमको लविंग नेचर चाहिए, सबके प्रति रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार, बेहद का प्यार, परमात्म प्यार, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, तो हमें ये प्यार भी हमको लविंग नेचर चाहिए हमेशा के लिए। नेक्स्ट है, ये जीवन में एक यात्रा है, हम मुसाफिरी पर निकले हुए हैं, और यात्री कहीं ठहरता नहीं है, हम मेहमान की तरह हैं, और मेहमान का किसी से कोई लगाव नहीं होता है। अगर उसको यात्री को यात्रा का मजा लेना है तो वो एक जगह ठहर थोड़ा जाएगा, उस यात्रा का उस जगह का मजा लेके आगे स्थान पर जाएगा। तो हमको कहीं ठहर नहीं जाना है, किसी में अटक नहीं जाना है, किसी से एक्स्ट्रा संबंध नहीं नए निर्माण कर लेने हैं, अभी तो संबंध से डिटैच होने के। यात्री हमेशा उपराम रहता है, न्यारा रहता है, वहां अटैचमेंट नहीं होती उससे, एक स्थान देखा उसका एंजॉय किया अगले स्थान पर चला जाता है। तो हम भी यात्रा पर निकले हुए हैं, यात्रा पर हमको ठहर नहीं जाना है, यात्रा हमारी निरंतर चलती रहनी चाहिए। मुसाफिरी लंबी है, अगर हम ठहर गए तो पूरी कहां होगी। तो हम उस यात्री की तरह, उस मुसाफिरी की तरह, मेहमान की तरह इस यात्रा का एंजॉयमेंट करना है। मेहमान की खातिर अगर मेहमान बनकर रहते हैं किसी के घर में तो खातिरी होती है, लेकिन मेहमान अगर लंबे समय तक ठहर जाए तो एक दिन तो रोटी में घी लगेगा ज्यादा, दूसरे दिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और तीसरे दिन बिल्कुल सूखी रोटी, तो समझ लो कि अभी सामने वाला कह रहा कि अभी चले जाओ यहां से। जब रोटी में घी लगना बंद हो जाए तो समझा जाता है कि अभी सामने वाला कह रहा कि अभी जाओ। तो मेहमान बन के रहेंगे तो खातिरी अच्छी होगी, है ना, अर्थात हमारा बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा, है ना, उसके ज्ञान की रोटियां मिलती रहेंगी हमको, घी की रोटियां घी से लगेगी, तो हम सभी मेहमान हैं, है ना। और नेक्स्ट है, इस ब्राह्मण जीवन में हमको कोई भी मौका मिले, सेवा का मौका मिले, वो हमको छोड़ना नहीं कभी भी, क्योंकि सारे कल्प में मौका, ये सेवा का जो क्षेत्र है बहुत जमा करने का टाइम है ये। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन जन, जितना भी सेवा का मौका मिले छोड़ना नहीं। जितना हम इस शरीर को सेवा में लगाएंगे उतना शरीर का शुद्धिकरण होगा, उतना शरीर का प्यूरिफिकेशन होगा, उतना शरीर हमारा तंदुरुस्त रहेगा, उतना शरीर की आयु बढ़ती जाएगी, साथ देगा शरीर हमेशा। तो हमको हमेशा ये देखना है कि जो भी हमको मौका मिले, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। सुनहरा को मौका मिल रहा है गोल्डन, किसी भी सेवा का, चाहे वो कोई सेवा छोटी तो होती नहीं है, ये तो कहने में आता है छोटी बड़ी, चाहे वो सफाई करने की सेवा है, चाहे भाषण करने की सेवा है, हर सेवा में ऑलराउंडर पार्टधारी है हम, क्योंकि पूरे ऑलराउंडर पार्ट, पूरे कल्प में हमने अनेक तरह के पार्ट बजाए हुए, तो सारे संस्कार आत्मा के अंदर है। और जितना हम सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उस सेवा में हमको सुख मिलेगा। अगर हम सोचते हैं छोटी सेवा तो अंदर में अभिमान छाया हुआ है और उसका कोई जमा नहीं होगा, फिर कोई भी सेवा मिल जाए, चाहे बाथरूम सफाई करने की सेवा मिल जाए, दिल से सेवा करेंगे तो अंदर में खुशी कायम रहेगी, नहीं तो खुशी पर ग्रहण लग जाएगा, खुशी मिलेगी नहीं। तो संसार में देखते हैं गुरुद्वारे में कैसे सेवा करते हैं, कैसे जूते सफाई करते हैं, है ना, भक्ति मार्ग में भी हमने मंदिरों में की होगी ना, मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी, तो हमको यहां जो भी सेवा मिलती है सच्चे दिल से प्यार से जिगरी से जिगर से बाबा की सेवा करनी, बाबा के यज्ञ की सेवा करनी है, है ना। चाहे हमको किसी आत्मा के लिए सेवा की मिलती, आत्मा की सेवा के लिए मौका मिलता है, तो भी हमको प्यार से करनी है ना। बहुत सुंदर हमको ये मौका मिला हुआ है ना, तो हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी मौका छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है प्योरिटी, ये ब्राह्मण जीवन की हमारा फाउंडेशन क्या है, पवित्रता। तो हमको इस प्योरिटी को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, क्योंकि सारे इस ब्राह्मण जीवन का आधार या ज्ञान का आधार, बाबा ने कहा जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी तो ज्ञान के जो रत्न है वो तुम्हारी बुद्धि धारण करती जाएगी। आज की मुरली में पवित्रता से संबंधित कौन सी बात थी ना, बात कौन सी बात थी, टाइटल था एक, और तुम हो डैश, उनको कहा जाता पवित्र, और राजऋषि, तुम हो राजऋषि था कि नहीं था, हाँ उनको कहा जाता पवित्र। तो पवित्रता तो हमारी श्वास है, हमारी वो संजीवनी है, अगर वो श्वास ही नहीं होगी तो फिर आगे कैसे वो ग्रहण करेगी रत्न। तो हमारी दिन प्रतिदिन प्योरिटी बढ़ती जानी चाहिए, और ये प्योरिटी बढ़ेगी, ये सब बातें हम करते रहेंगे धीरे धीरे तो ही बढ़ेगी वो, उसमें फिर खान पान भी शुद्ध आ जाता है, कंपनी की बात आ जाती है, पढ़ाई लिखा की भी बात आ जाती है ना। तो हमारी प्योरिटी दिन प्रतिदिन, फिर नेक्स्ट है अपने आप से क्वेश्चन करना है, हमको भगवान ने चुना किस लिए है, या हम ब्राह्मण जीवन में आए हैं तो हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, वो हमको अपनी आप अपने प्रति जांच करनी है, रोज अपने आप से पूछते रहना है, मैं ब्राह्मण बना किस लिए, नहीं तो पुराने संसार में भी तो थे ना, यहां आए तो कुछ तो भिन्नता होनी चाहिए कि नहीं, टोटली चेंज हो जाना चाहिए। तो अपनी जांच करनी है, बाबा ने कहा अपना रजिस्टर रखो, जांच रखो, अपना पोता मेल निकालो, कितने घंटे याद किया आज, बाबा ने बात की ना 8 घंटे याद करो, हाँ तो टाइम मैनेजमेंट बाबा सिखाता है, क्या था आज की मुरली में, 8 घंटे कर्मयोगी, 8 घंटे आराम और 8 घंटे, तो 8 घंटे बैठ के करेंगे क्या? धन्य है अगर उसको 8 घंटे याद करता होगा बैठ के कोई आज की डेट में उसको तो पांव पकड़ने चाहिए जाके, पहले मिले तो सही कहा है 8 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल है आजकल, है ना। तो देखो बाबा ने तो पहले से कहा हुआ है, लेकिन बाबा ने पहले बिठाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहले यहां भी रात रात भट्टी चलती थी, बैठे रहते थे, लेकिन अभी आजकल शरीरों में दम ही नहीं रहा तो बैठना कहां से, घुटने दुखना शुरू होते हैं, मोबाइल भी आ गया है साथ में, बैठने नहीं देता है। नहीं मोबाइल से तो बैठे रहते हम तो देखना है हमको कि प्रश्न अपने आप से पूछने हैं कि अपना पोता में देखना है कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं। और याद ऐसा नहीं कि बैठ के, बहुत सारी चीजों से याद की लिंक जुड़ी रहती है। अगर हम बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, आज का वरदान था ना, मुरली दर से प्यार है, अर्थात मुरली से प्यार है, और मुरली से प्यार है उसका परिणाम क्या होगा, शक्तिशाली बनने का वरदान सदैव मिलता जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं मुरली दर से तो प्यार है, लेकिन मुरली पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है, सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, तो बाबा नहीं मानते। बाबा ने कहा जहां लगने वहां बिघन आ ही नहीं सकता है। तो ऐसा नियम बहाने दे, क्योंकि बहाने मारने के तो हम सभी एकदम मास्टर बन गए हुए, बोलेंगे शरीर साथ नहीं देता है, फुर्सत नहीं है, या घर में बच्चे हैं, जिम्मेवारी तो होती हैं, लेकिन जिसको मुरली पढ़नी है जहां चाहे वहां रास्ता निकल ही आता है, कैसे न कैसे करके। बाबा ने कहा कितना किलोमीटर से बच्चे दूर दूर से, आज की मुरली में था ना, कितने दूर दूर से बच्चे आते हैं, आज की नहीं कल की परसों की आने वाली मुरली में है, कि 1-2 बजे भी उठ के बच्चे चल पड़ते हैं जगदीश भाई की बाबा बात करते हैं, है ना। और हमने भी अपनी आंखों से देखा, बुजुर्ग लोग सेंटर में 7-8 किलोमीटर सूर्य पैदल चल के पहुंच जाते थे। देखो व्यक्ति सामने से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उनको उनको देख के हमारा खून खोलने लगता था कि बुजुर्ग आदमी 6 किलोमीटर से चल के आ रहा है और हम क्लास में नहीं पहुंच सकते, तो उनको देखने से कितनी बड़ी सेवा होगी उनकी, उनका जीवन चरित्र हमारे लिए सेवा के जैसे प्रेरणा स्रोत बन गया है। तो ऐसा नहीं किसी को मुख से बोलने की सेवा, कर्क की मुरली में था ना, बोलने से नहीं, किसी को देखने से सेवा हो जाती है। हमारा चलना फिरना उठना बोलना देखना ये सब सेवा कर रहा है। तो हमको ये देखना है कि सेवा हमारी कहां कहां, किसके लिए प्रेरणा स्रोत किस तरीके से बने, हमको अपना ही सारा चेकिंग करना है। तो और नेक्स्ट है रिफ्रेश, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान को रिकॉल करना। रिकॉल अर्थात जो भी हम मुरली सुनते हैं तो जब भी मौका मिले, उनको दिन में 5-10 मिनट मिलते हैं, उसको मन ही मन रिकॉल करना है बार बार कि सवेरे हमने आज क्या सुना है, मीठे बच्चे क्या था, प्रश्नोत्तर क्या था, प्रदान क्या था, स्लोगन क्या था, मुरली की स्टार्टिंग कैसी थी, मुरली का पहला पैराग्राफ उसमें क्या था, आज की मुरली में पहले पैराग्राफ में क्या था, तो भी आना है आके सो जाओ, ये याद रही बात हाँ ठीक बोला, ठीक है तो याद रहनी चाहिए। और दूसरी बात 15.5 डिग्री हाँ स्थिति कब बोला, अच्छा 16 डिग्री हाँ 16 हाँ। और उसमें पहले पैराग्राफ ने बाप के ऊपर थी, लौकिक बाप और परलौकिक बाप, ये पहला पैराग्राफ था। लौकिक बाप क्या करता है, बाप वो बाप भी उस बाप को याद करता है, जब दुख होता है तो उस बाप को याद करता है, वो बाप सच्ची गीता सुनाते हैं, सच्ची गीता सुनने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, है ना, वो है परलौकिक बाप। तो पहला पैराग्राफ बाप के बारे में था, लौकिक परलौकिक, लौकिक परलौकिक, पहला पैरा ये था। तो हमको रिकॉल करना बार बार ताकि बुद्धि हमारी रिफ्रेश रहे, हमारी खुशी कायम रहे, है ना। जैसे थकावट होती है तो रिफ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं ना, ऐसे ज्ञान को भी थोड़ा सा खा पी लेना तो हमारी बुद्धि रिफ्रेश रहेगी, रिकॉल करना है। और क्या क्या था मुरली में आज की, राम राज्य और रावण राज्य क्या होगा उसका, राम राज्य नहीं घराने की बात थी, अभी ये तुम रावण घराने के में पहुंच गए, पहले तुम थे सूर्यवंशी घराने में, अब पहुंच गए हो रावण के घराने में पहुंच गए हो, हाँ। और हैं हाँ, सोमनाथ का मंदिर बनाने की ताकत तुम बच्चों के सिवाय किसी में नहीं है, और तुम बच्चे बना सकते हो, दूसरे नहीं बना सकते। और क्या था है? हाँ, हमारे में बाबा आए मम्मा आए, ये भी माया है, माया बड़ी शैतान है। तो कैसे कैसे, क्योंकि ये जो बाबा ने कहा ना, ये तो मम्मा बाबा के टाइम में भी ऐसे होता था, तो आजकल इस चीज से बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अभी इधर उधर ऐसे बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन कहेंगे मम्मा बाबा आ रहे हैं, हो ही रहे संसार में। लेकिन एक बात हमको हमेशा याद रखनी है कि जो मुरलियन है यही भगवान है। अभी मुरली को हमने जितना आज तक हमने ज्ञान सुना, पढ़ा कहां हमने अभी तक, उसको धारण कहां किया हमने, उसको धारण करना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, बाबा जो बात कहते हैं उसको करके दिखाओ पहले। तो हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे माया भटकाना है, क्योंकि माया पूरा साम दाम दंड भेद सारा अपना पूरा जोर लगा देगी, बीसो नाकनों का जोर। तो हमको पीछे थोड़ा हटना, बीसो नाकनों का जोर हमको भी लगाना है, अंत तक माया पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए ज्ञान को रिकॉल करना, बार बार करते रहना करते रहना। नेक्स्ट है, जीवन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, है ना। कोई फैशन का शौक इतना नहीं होना चाहिए, शौक हमारे ऐसे ना हो जाए कि हमारा ध्यान ही शौक की तरफ जाता रहे, बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहे। क्योंकि इस ज्ञान में बाबा ने कहा सिंपल जीवन हो, सादा जीवन, उच्च विचार, विचारों से अमीर बनना है हमको, है ना। रहना हमको साधारण, तुम बनवा में हो, है ना, बनवा में हो। तो बनवा में क्या होता है फिर, बनवा में रहने से क्या क्या होता है, वैराग्य होता है ना, और मिठास, मधुबन में हो तुम। तो हमको बनवा में बैठे हैं, हमारी सिंपलिसिटी, टू मच शौक नहीं होने चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे जूते पहने, बड़ी ऐसा चश्मा हो, अच्छी टोपियां हो, सिंपल जो मिले, जैसे मिले, सहज मिले, वो लेना है। ना ज्यादा नीचा ना ज्यादा ऊपर, सामान्य जीवन होना चाहिए, सिंपल जीवन, है ना। और सामने वाले को पता है इनका जीवन त्यागी तपस्वी योगी जीवन है, ऐसा ना लगे कि ये तो संसाधनों के वश में हुआ पड़ा है, और वो साधन ही हमारी साधना को खा जाए तो फिर क्या कहेंगे। तो अपने जीवन में सिंपलिसिटी रखनी है, है ना। और नेक्स्ट है फिर टाइम मैनेजमेंट, जो भी सारे दिन की 24 घंटे की दिनचर्या, जैसे आज बाबा ने कहा 8-8 घंटे का, तो हमको टाइम मैनेजमेंट देखना है। जो भी हम सेवा करते हैं, चाहे लौकिक में करें चाहे अलौकिक में, जो हमको देखना है टाइम हमारा वेस्ट न जाए, उस टाइम को हमको सेट करना है कि हम कितना समय याद में बैठ सकते हैं, कौन सा टाइम हमारा जो वेस्ट जा रहा है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं, जो हमको टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको रोकना है वहां भी, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा, अभी टाइम बहुत हाथ से निकल चुका हुआ है। आगे तो फ्यूचर का देख रहे हैं, संसार में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कुछ कर नहीं पाएगा। अभी तो ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे कहीं भी कोरोना वायरस के कारण, है ना। कई जगह तो ऐसे भी है, ऐसे सुनने में आ रहा है कई सेंटरों में भी गवर्नमेंट के आदेश जा रहे हैं कि अभी कुछ दिनों तक नहीं जाओ क्लास में। जो बाबा ने बोला ना कर्फ्यू लग जाए घर में, तो धारा 140 कई जगह लागू हो गई है अभी, है ना। दुश्मन गुप्त रूप से, कौन सा दुश्मन, दिखाई भी नहीं दे रहा है, कर लो अभी बात, वो बंदूक ठहरा लेके आएगा, दबे पांव आ रहा है, चुपके से आ गया वो। तो वो टाइम अभी आ चुका हुआ है, टाइम हमारे हाथ से बहुत निकल गया हुआ है, अब थोड़ा सा बचा है, फिर नहीं तो ऐसा ना हो कि आप पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत वो कहना पड़े, हमको खून के आंसू बहाने पड़े। तो जो भी हमको थोड़ा सा टाइम बचा है, इससे हमको पूरा प्यार से, पूरा दिल से, जिगर से पुरुषार्थ में लग जाना है, अंदर ही अंदर बाबा को बड़े प्यार से याद करते रहना है। अलग अलग संबंधों से याद करो, उसकी पढ़ाई को याद करो। बाबा ने कहा पढ़ाई और परिवार ये तुम्हारा किला है, आय के प्रधान में था जिसमें तुम सेफ रहते हो, है ना। तो जीवन में सिंपलिसिटी भी जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। फिर नेक्स्ट है अपना उपचार, है ना, उपचार ये देख रहे हैं, इसको देखते हुए हमको अपनी स्वच्छता बड़ी जरूरी है, शारीरिक स्वच्छता भी जरूरी है, हाथ पांव साफ रखने हैं, दूरी बना के रखनी, जो बार बार बहन जी को अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, तो हमको ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। थोड़ा खांसना है तो रुमाल पर, है ना, कईयों को एलर्जी होती है, इन दिनों में तो छींकें आती आती हैं, हमको भी आती हैं। अब किसी के आगे जाके छींकते तो अच्छा नहीं लगेगा, वो सोचेगा इसको वो वायरस ना हो, हालांकि हमको पहले से एलर्जी है, होती है इन दिनों में तो ही जाती है किसी को, है ना। तो ये हमको स्वच्छता का ध्यान रखना है, स्नान करना है, जो नियम मर्यादे हमारी है उनके अनुकूल चलना है, क्योंकि शरीर एक मंदिर है, इसके अंदर आत्मा रूपी देवता या देवी बैठी हुई है, तो उसकी भी हमको पूरा उपचार स्वयं का स्वयं ही करना है, पूरी स्वच्छता बना के रखनी है ना, क्योंकि स्वच्छता जहां है वहां देवताएं बसते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है यह है स्वयं की स्वच्छता उपचार। नेक्स्ट है विशेषताओं का दर्शन करना, सभी की विशेषताएं देखनी है, सभी को ये होमवर्क है, अपनी अपनी विशेषताएं लिखना आप सभी, क्योंकि हम अपनी विशेषताओं को कम ध्यान में रखते हैं। कौन आप में कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता आप में, रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं ना, है? हाँ, तो ये विशेषता लिखनी है कि मैं रेगुलर पढ़ाई पढ़ती हूं। और कौन सी विशेषता है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कभी रोते नहीं है, बाबा ने कहा तुमको रोना नहीं है, काल की मुरली में था ना, हाँ रोना नहीं है, तो अपनी विशेषताएं भी लिखनी है और दूसरे की विशेषताओं का भी दर्शन करना है। दूसरों के अवगुण चित्त पर नहीं रखने, अगर इतने लोगों के एक एक अवगुण चित्त में रखेंगे तो कितने ढेर सारे अवगुण हो जाएंगे, तो अवगुण नहीं देखने किसी के भी, विशेषताओं का दर्शन करना है। और नेक्स्ट है स्वयं को बाच करना है, देखना है क्या बाच करेंगे, कि जब से हम ब्राह्मण जीवन लिया और अभी तक हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है, अगर नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है, उसको देखना है, जांच करना है, उसकी बार बार तहकीकात करनी है। और नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस जो ब्राह्मण जीवन में जब जब बाबा ने हमको विशेष अनुभव कराए, हम मुसीबतों में फंसे हुए थे और बाबा ने हमको निकाला है, तो उन अनुभवों को याद करना है, वो अनुभव हमेशा हमको जीवन में आगे बढ़ाते हैं, उत्साह में रखते हैं। ऐसा तो कोई ब्राह्मण नहीं होगा जिसको कोई विशेष अनुभव नहीं होंगे, सबको विशेष अनुभव हुए, कोई कितनी मुसीबतें थी और बाबा ने एक सेकंड में उनको पार कर दिया, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे अंदर वो ताकत भर दी, नहीं तो हमको तो वो ताकत थी नहीं है, सोचा नहीं था कोई ऐसी मुसीबत आएगी जिसका हम सामना कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो सहज पार हो गया, तो कराने वाला कौन था, वो बाबा था। तो हमको एक्सपीरियंस जो भी है वो हमेशा हमको याद रखने हैं। और नेक्स्ट है यमराज, यमराज को भी याद रखना है कि यमराज भी हमारे जाके हमको सलामी भरे, ऐसा नहीं हमको उसकी जाके मार खानी पड़े। उस दिन था ना, अगर किसी के प्रति नफरत घृणा रखे तो क्या होगा, हाँ डंडे खाने पड़ेंगे, डंडा नहीं डंडे खाने पड़ेंगे, तो वो भी हमको देखना है, यमराज के डंडों से मुक्त रहने के लिए वो भी हमको अपनी जांच करनी है। और लास्ट में ये सारी बातें करेंगे ना तो जीरो से हीरो बन जाएंगे, जेड माने जीरो से हीरो बन जाएंगे। तो ये 26 बातें थी, कौन कौन सी थी, सबसे पहले एंटेनमेंट प्राप्ति हमको याद रखनी है, इस ब्राह्मण जीवन में क्या क्या प्राप्ति हुई है। दूसरा अपनी भाषा पर ध्यान रखना है ना। तीसरा अब बताओ आप, कंपनी, हमारा संघ कैसा होना चाहिए, संघ को श्रेष्ठ बनाना है। चौथा दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टि में अलौकिकता है, प्योरिटी है, आत्मिक है, स्नेह वाली दृष्टि है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमेशा करनी है, रूहानी भी और जिस्मानी एक्सरसाइज भी करनी है, दोनों एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट फॉरगिव, हाँ फॉरगिव, हमेशा क्षमा कर भी देना, क्षमा मांग भी लेना है। नेक्स्ट गुड विशेष, सबके प्रति गुड विशेष, शुभ भावना शुभकामना रखनी है। नेक्स्ट हाँ एक एच रहेगा बीच में, हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए, सबको मदद करने की है ना, कोई कैसा भी है हमको मदद करनी है, आगे बढ़ाना किसी को, तो हेल्पिंग नेचर। फिर नेक्स्ट है इग्नोर, कौन कौन सी बातों को हमको इग्नोर करना है वो भी हमको देखना चाहिए। नेक्स्ट है जिम्मेवारियां, हमको कितनी बड़ी जिम्मेवारियां मिली हैं, तो उन जिम्मेवारियों को भी हमको सामने रखते हुए इन जिम्मेवारियों को पूरा करना है, नहीं तो बाबा ताज कैसे देगा, नहीं तो टोकरी वाला तो आज बाबा ने कुमारियों के लिए कहा ना, क्या कहा कुमारियों के लिए, कल कहा था हाँ, कुमारी वो जो 100 ब्राह्मणों को तैयार करे, कोई कोई कुमारियां होती हैं आजकल तो सेंटरों में रहना कम ही कर दिया, शुरू जाना चले जाना जाइए सेंटर में, थोड़े दिन ही लगते एडजस्ट होने में, धीरे धीरे सेट हो जाते हैं, डरते हैं, नौकरी करने के लिए नहीं डरेंगे लेकिन वहां डरेंगे, अरे भगवान इतना बड़ा ताज दे रहा है उसको छोड़ के हम पाई पैसे की नौकरी करें, है किसी के जीवन के चरित्र को उत्थान कर देना उसका, है ना, तो कोई कोई कुमारियां तो अपने आप को बंधन में बांध देती, घर में रहती है, घर से निकल जाना चाहिए। अगर निर्बंधन है तो, निर्बंधन है तो घर से निकल जाना चाहिए, अर्थात सेंटर में रहना शुरू कर देना चाहिए। और सेंटर में जितने विघ्न आते हैं समझ लीजिए, वो विघ्न हमको मजबूत बनाते हैं। बिना विघ्न अगर हम चलते हैं तो लड़खड़ाते रहेंगे जिंदगी भर। विघ्न हमको सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मजबूत बनाते हैं हमको। डरना नहीं है, सिर एक बार ओखली में दे दिया तो क्या डरना उस मुश्किलों से। फिर एक कुमारी है नौकरी वोकरी छोड़ के एकदम सेंटर में समर्पित होगी, और आज बड़े बड़े सेंटर मतलब कितने स्टूडेंट को लेके आती है, कितने जिज्ञासुओं को लेके आती है, कितनों का कल्याण कर दिया। ऐसे थोड़ा बाबा ताज रखेगा। तो जिम्मेवारियों से हमको भागना नहीं है। फिर नेक्स्ट है ये खेल चल रहा है, इस रिश्ते में खेल चल रहा है, इसमें हम सभी खिलाड़ी हैं, है ना। खिलाड़ी बाबा ने खिलाड़ियों की एक बार बात कही थी, पांच खिलाड़ी प्रकृति के, पांच खिलाड़ी माया के, पांच खिलाड़ी हैं, है ना। तो हमको किक मारते रहना है, कभी वो सामने आता कभी वो सामने, किक मारते रहना उसको बस, है ना। तो हम ये खेल चल रहा है, इस खेल में हमको कैसा पार्ट प्ले करना है वो देखना है। नेक्स्ट है लविंग नेचर, प्यार की नेचर होनी चाहिए, सूखा रूखा सन्यासी नहीं होना चाहिए, सबके प्रति प्यार से चलना, मुस्कुराते हुए रहना है। ये जीवन हमको मुस्कुराने के लिए दिया हुआ है, ऐसे थोड़ा 12 बजे चेहरे में ऐसे हमेशा रहे। हाँ कभी कभी होता है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हमेशा थोड़े रहने चाहिए, खुशी में रहना है, दूसरों को भी प्यार देना है। और नेक्स्ट है भटकना नहीं है, और मेहमान समझना है, मुसाफरी है, यात्रा पर चल रहे हैं हम, मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर हमेशा रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, औरों को भी लेके चलना साथ में। नेक्स्ट है, हाँ जी नहीं बीच में उसके बाद निमित्त भाव, ये छूट गया था, हाँ निमित्त भाव बनकर हमको सेवा करनी है। निमित्त भाव से कल दो फायदे काल बाबा ने मुरली में बताए थे, कौन से, अगर निमित्त भाव से सेवा करते हैं तो हमेशा दो बातें कायम रहेंगी, कौन सी, खुशी और शक्ति मिलेगी। कल संडे की मुरली में था कि नहीं, हाँ, तो निमित्त भाव। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका मिले छोड़ना नहीं है, अगर अभी छोड़ दे तो कल कल छोड़ते रहेंगे, है ना। कल बाबा ने बताया था ना, विशेषताओं को अगर काम में नहीं लगाएंगे तो वो वहीं के वहीं रह जाती हैं, हैं, गुम हो जाती हैं, फिर ढूंढते रहो टॉर्च लेके। तो हमको ये मौका छोड़ना नहीं देना। नेक्स्ट है प्योरिटी, अपनी प्योरिटी को दिन प्रतिदिन उसमें निखार लाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैं ब्राह्मण किस लिए बना है। नेक्स्ट है रिकॉल, रिफ्रेश, ज्ञान को रिकॉल करना है, बार बार ज्ञान डांस करना है उसका। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, है ना, तो सिंपल रहना है एकदम। और नेक्स्ट है टाइम मैनेज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो ये में हो गया टाइम, चलो दोबारा भी एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलता है दोबारा भी, टाइम मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है उपचार, स्वयं का उपचार, इसमें एक्सरसाइज बताया था, ठीक बोला आप, उपचार। नेक्स्ट है विशेषता, दर्शन करने सबकी। और नेक्स्ट है बात करना स्वयं को। और नेक्स्ट है यमराज, यमराज को भी साथी बना के रखना है। और नेक्स्ट है जीरो से हीरो बन जाएंगे, तो ये जीरो से हीरो बनने की यात्रा थी। तो ये 26 बातें, ऐसे ज्ञान को किसी भी तरीके से, ये सारी मुरली से या आज की मुरली से निकाली, इतनी सारी बातें मुरली में है। अगर हम अलग अलग तरीके से देखते हैं तो ये ज्ञान जो भाव ने कहा ना, ज्ञान सागर की तरह है, तो कुछ भी ऐसे ज्ञान चिंतन करते करते अपने को बिजी रखना है तो हमारी खुशी हमेशा कायम रहेगी। ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं रहे तो कब रहेंगे, देवताओं से भी उत्तम ये जीवन है। देवता तो फिर भी पता थोड़ा चलेगा कि हम खुश हो रहे हैं, पता चलेगा उनको, ये तो हमको भी पता चल रहा है कि हम खुश हो रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, देवताओं को थोड़ा पता है। तो देवताओं से भी उत्तम ब्राह्मण चोटी है, इसलिए हमारी खुशी सदा कायम रहे तो उसके लिए ज्ञान का चिंतन, मन चिंतन, पढ़ाई से प्रीत, मुरली दर से प्रीत, ये सब चीजें, परिवार से प्रीत, यज्ञ से प्रीत, सेवा से प्रीत, ये सब चीजें हमारी निरंतर चलती रहनी चाहिए। ओम शांति।